感じです。
いや、
おおおभगवान जोर दे रहे हैं कि हमें कुछ देना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापसत। आपको कुछ देना है, पहले हमें करना है, उसके बाद में फिर देवता करेंगे। इसके ऊपर भगवान बहुत जोर दे रहे हैं। परस्परम भावयंत, परस्परम भावयंत मतलब अपने आप को बढ़ाओ। अगर आप देवता की पूजा करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमको परस्पर को बढ़ाना। श्रेयम परम, अब आप श्रेयम क्या है, परम श्रेय क्या है, बोलो। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग आपको यही मिल जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए आपको हवन नहीं करना होगा। आप लोगों को पता है स्वर्ग जाने का एक हवन होता है, वो हवन करने से आप स्वर्ग जा सकते हो, मगर फिर वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि उस हवन का जितना पुण्य है उतने दिन आप रहोगे, उसके बाद वापस आओ। तो भगवान कहते हैं आप स्वर्ग इसी पृथ्वी पर बना सकते हो कि अगर आप देना सीखो, सेवा करना सीखो। बहुत अच्छा। भगवान कहते हैं कि मैं नाराज हो जाता हूं किन से, जो मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं बार बार कहता हूं करना है, करना है, करना है, करना है, कर्मयोग करना है, मेरी प्रसन्नता के लिए करना है, ईश्वर के लिए करना है। इतनी बार कहता हूं मैं, सुनने के बाद में फिर भी लोग नहीं करते हैं। तो भगवान जो कहते हैं दुखी हो जाते हैं। भुंजते तो अघम पापा ये पचंती आत्मकारनात्, आत्मकारनात् जो अपने लिए पचंती, अपने लिए खाना बनाते हैं, बोलते हैं वो पाप इकट्ठा कर रहे हैं। अपने लिए जो खाना बनाते हैं, आपने कभी हलवाई को देखा है इंडिया में? वो जब भी पहले मिठाई बनाता है ना, तो पहली मिठाई वो आग में डालता है। कभी ख्याल किया आपने? पहले अग्नि भगवान को देना है। क्यों? अरे उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। वहां उन हलवाइयों के पास में तो कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा सा कमती गैस कर दो, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो, तो सब कुछ जो है वो आग के ऊपर निर्भर है ना। तो सबसे पहले अग्नि देवता को प्रसन्न करता है कि हम आज बनाने जा रहे हैं, ख्याल रखना। देखो काम में कर्म करने से, काम में कर्म क्या है, जो अपने लिए कर्म करते हैं, उससे क्या होता है, बोले देखो आपको पावर मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपको वेल्थ मिलेगा, आपको प्रॉस्पर्टी होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा मगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा क्योंकि आपने कमाया है काफी। मगर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा बल्कि आपका वो घटता जाएगा क्योंकि काम कर्म के अंदर क्या होता है वासना बढ़ती रहती है। वो पाप है उसी को पाप कहते हैं भगवान। बढ़ता जाएगा काम कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ उतना वो बढ़ता जाएगा और जितना पाप बढ़ेगा जितना वासना बढ़ेगी उतना आप भगवान से दूर होते जाओगे। देखो ये सीधी सीधी बात है। भगवान से दूर होते जाओगे क्यों? क्योंकि आप वासना के अनुसार काम करोगे। जिसका मतलब कहां करोगे? जगत में काम करोगे, ओईटी में काम करोगे। भगवान है कहां? ओईटी कहां है? बाहर। दूर हो गए ना भगवान से। इसका मतलब उन लोगों का अज्ञान बहुत गहरा है। जो काम में कर्म करते हैं, जो ओईटी में रमन करते हैं, उन लोगों का अज्ञान जो है बहुत भारी है, बहुत गहरा है। यज्ञ शिष्ट असिना मुच्चन्ते सर्व किल विषयी। मगर जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं, यज्ञ शिष्ट मतलब क्या? यज्ञ किया और उसके बाद जो बचा, जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं उनका क्या होता है? मुच्चन्ते सर्व किल विषयी। किल विषयी मतलब पाप, सारे पाप उनके खत्म हो जाते हैं। अब बताओ पाप हमको खत्म करना है कि पाप को बढ़ाना है? पाप खत्म करना मतलब वासना खत्म करनी, पाप बढ़ाना मतलब वासना को बढ़ाना है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ रूप से कर्म करो तो आप जो है कर्म बंधन नहीं होगा, आपको मुक्ति होगी। यज्ञ रूप से कर्म करना मतलब क्या? यज्ञ माने
विष्णु।
यज्ञ माने विष्णु, याद रखना। भगवान जब जब कहते हैं कि यज्ञ रूप से कर्म करो इसका मतलब क्या? विष्णु के लिए कर्म करो। विष्णु के लिए कर्म करो मतलब ईश्वर के लिए कर्म करो। ईश्वर के लिए कर्म करो मतलब क्या? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म हो। ऐसा अगर आप कर्म करेंगे तो आपकी वासना कमती होती जाएगी, आपका पाप कमती होता जाएगा। तो यहां देखो इसकी फलश्रुति बता दी। फलश्रुति मतलब कि अगर आप यज्ञ करोगे तो क्या होगा? यज्ञ करके कर्म करोगे तो आपके पाप, आपकी वासना कम होती जाएगी, और अगर यज्ञ नहीं करोगे तो वासना बढ़ती जाएगी। ये फल है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम यज्ञ रूपी कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। चॉइस तो हमारी है, भगवान ने तो डिसीजन दे दिया ऐसा करो। मगर उसके पहले हम लोग को अधिकार दिया हुआ है, कर्मण्येव वा अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। हम लोग को कर्म का अधिकार है। भगवान 50 बार भी बोले, अल्टीमेट चॉइस हमारी है करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान बार बार कहते हैं कर्मयोग करो, हमारी मर्जी है करेंगे नहीं करेंगे। जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन शुरू करेंगे, नहीं तो चलता रहता है, जैसे चलता था आगे वैसे चलता रहेगा। देखो हम जानकर भी अनजान में, जानकर या अनजान में कई पाप कर लेते हैं। और उस जमाने के अंदर में वो कहते हैं कि 5 किस्म के पाप जो हैं नॉर्मल थे। क्या क्या पाप थे वो तो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। कंडनम पेशनम चुल्ली उदकुंभश्च मार्जनी पंच सूना गृहस्थस्य पंच यज्ञात प्रणश्यति। 5 किस्म के पाप आप करते हो। क्या है भाई? एक तो है कंडनम। कंडनम मतलब आपको बताया था, व्हाट इज कंडनम? हिंदी वर्ड है ओखल मूसली। आगे लोग कैसे पीसते थे मसाले, होता था ना एक लोहे का और एक मूसल होता था, उसमें डाल के पाउंडिंग। उसके बाद पेशनम, गेहूं का आटा, आशीर्वाद या ये सब नहीं था उस टाइम में, लोग घर में पीसते थे।
चक्की,
चक्की। या वो सिल बट्टे पर मसाला पीसते थे पेसनम, मगर उसका टेस्ट अलग होता है पेसनम। उसके बाद में चुल्ली, गैस नहीं होती थी, लोग काठ जलाते थे, काठ के अंदर कीड़े होते थे, वो कीड़े भी जल के मर जाते थे। हम जानकर नहीं करते थे ऐसा, मगर उसमें होते थे तो मर जाते थे, तो पाप हुआ ना। गेहूं के अंदर घुन है, आपने पीस दिया, मर गया। मसाले के अंदर में कुछ कीड़ा है, गया। उत्कुम्भश्च, जो आपने कलसी बनाई है उसके अंदर आप पानी रखते हो तो उसके अंदर ही बोलते हैं आपके कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, उत्कुम्भश्च। मार्जनी, मार्जनी किसको कहते हैं? झाड़ू को। जब आप झाड़ू देते हो तो कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं। तो ये पांच किस्म के पाप हुए। तो कहते हैं पांच किस्म के अगर आप यज्ञ करो जो कि रोज आपको करने चाहिए, तो ये पांच पाप पांच यज्ञ के करने से खत्म हो गए। अब आप कहोगे हम तो ये सब करते नहीं हैं। बड़े आपके बिहाप में कोई तो कर रहा है, वो पीसा हुआ आटा मसाला तो आप खा रहे हो, तो फल तो आपको लेना होगा। तो क्या क्या है? तो कहते हैं कि पहले आपको देव यज्ञ करना है। देखो प्रकृति में है, कितने भी जितनी प्रकृति उनके संचालक हैं, जैसे वायु है वायु देवता है अग्नि देवता है जल देवता है, सब जितने भी फोर्सेस हैं उनके पीछे देवता हैं, और हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन सब के पीछे भी देवता है, मन का भी देवता है, आंख का भी देवता है, सबके अलग अलग देवता हैं। तो बोलते हैं देव यज्ञ करना है। क्यों करना है भाई? देखो आप वायु को अग्नि को पृथ्वी को इन सब को व्यवहार करते हो कि नहीं? अगर आप व्यवहार करते हो इनके कारण, इनके बिना तुम जी भी नहीं सकते, तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? कुछ बनता है कि नहीं? हमें कोई एक छोटी सी चीज दे देता है, कार्ड दे देता है, बच्चे हमें कार्ड दे देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल, हम कहते हैं थैंक यू। छोटी सी चीज हम थैंक यू बोलते हैं। अब भगवान इतनी चीज देते हैं आपको जिसके बिना हम जी नहीं सकते, मगर हम भगवान को कभी भी नहीं कहते थैंक यू। देखो धरती पर पांव जब हम रखते हैं ना, तो धरती का अपमान होता है। किसी भी चीज को हमारे हिंदू धर्म में पांव से नहीं छूते हैं। अगर आपने मान लो किसी किताब को पांव से छू दिया, क्या करते हो आप? ऐसे लगा सिर पर लगाते हो। हम पांव से नहीं छूते। तो अगर हम पांव क्या धरती पर ना रखें, किसी को पांव से छूना मतलब उसका अपमान कर देना। अगर कोई व्यक्ति आपको पांव से ऐसे छू देता है तो आपका अपमान है वो। तो धरती पर पांव रखना धरती का अपमान है। तो हम क्या पांव नहीं रखें? नहीं रखें, जरूर रखें, मगर उसके लिए एक प्रार्थना कीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत तने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मेरे को क्षमा करो, मैं आपको पांव लगा रहा हूं। बड़े दुख की बात है कि हमारे बाल विहार कक्षाओं में, चलो मैं नाम भी बताता हूं, सबसे ऊंची कक्षा में बच्चे किताबों को पांव से खेलते हैं। मुझे दो दिन पहले ही पता लगा, बहुत दुख हुआ कि ये बच्चे बाल विहार 12 साल तक करने के बाद में भी, जिसको हम पुस्तकों को सरस्वती मानते हैं, उनको पांव से खेलते हैं। अपमान है ना वो। तो हम जो उनको 12 साल के अंदर भी उनको संस्कार नहीं दे पाए। तो सूर्य चंद्र सबको एक्नॉलेज करो, ये सब देव यज्ञ है। कैसे एक्नॉलेज करें? तो देखो एक तो होती है देवता की पूजा, पूजा कर सकते हो, या क्षमा याचना कर सकते हो, उनका कीर्तन कर सकते हो, उनको नमन कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, उनका गुणगान कर सकते हो, उनकी प्रार्थना कर सकते हो, ये सब देव यज्ञ हो गए। तो देवता जो हमें देते हैं उनके लिए हमें देव यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब क्या? ब्रह्म माने ब्राह्मण ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, उनके हम ऋणी हैं। जिनसे हमें ज्ञान मिलता है उनके हम ऋणी हैं। देखो ब्रह्म ज्ञान कहीं पर भी पैसे से नहीं मिलता, जहां भी ब्रह्म ज्ञान मिलता है ना वो फ्री मिलता है, हम उसके लिए ऋणी रहते हैं। तो हम क्या करें, कैसे अपना ऋण चुकाएं? तो शास्त्र कहता है आप ज्ञान लीजिए और उसका प्रचार कीजिए, उसके प्रचार में सहायता कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं वैसे कीजिए, तन मन धन से प्रचार कीजिए। कई लोग धन देते हैं प्रचार के लिए, कई तन लगाते हैं, तन लगाना मतलब अपना समय लगाते हैं, जाते हैं कहीं पढ़ाते हैं। हमारे बाल बिहार के जितने भी सेवक सेविकाएं हैं या स्टडी क्लास के जितने सेवक सेविकाएं हैं सब यज्ञ कर रहे हैं, ये ब्रह्म यज्ञ है। तो पढ़ाने का अगर हमें सुयोग मिलता है तो भी यज्ञ है। मगर हमारे यहां एक गुरु दक्षिणा की भी प्रथा है। देखो गुरु दक्षिणा है, दक्षिणा और दान में फर्क होता है। दान असहाय व्यक्ति को दिया जाता है, दक्षिणा समर्थ व्यक्ति को दी जाती है। दक्षिणा ज्ञानी लेता है, ज्ञानी दान नहीं लेता है। तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में ऐसा है ना कि अगर कोई घर में डॉक्टर आए जान पहचान का हो तो जान पहचान वाला डॉक्टर पैसा नहीं लेता है। तो लोग कहते हैं नहीं आप पैसे नहीं लोगे तो दवाई काम नहीं करेगी, कुछ देते हैं उसको। क्यों? वो भी गुरु रूप है ना, उसके पास वो विद्या है, उसने उस विद्या को व्यवहार किया, उसने प्रेस्क्रिप्शन लिखी, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी उसे। अगर आप पढ़कर बांटते नहीं हो तो आपने ज्ञान का इंसल्ट किया। देखो इतनी बड़ी बात जो है शास्त्र कह देता है, पढ़ने के बाद में आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद में आपने बांटा नहीं उसको, तो यह शास्त्र का अपमान है। तीसरा है पितृ यज्ञ। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों को पिता माता और जितने भी पूर्वज हैं उनका सम्मान करें। देखो उनके पुण्य के कारण हमको यह मिला है शरीर, ये जान के रखो, उन्होंने पुण्य किया है जिसके कारण हमको ये शरीर मिला है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। तो यहां तैतरीय उपनिषद में कहते हैं माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजा संधि। तो उपनिषद कहता है माता पिता उनकी संधि होती है, यूनियन होता है, तब जो है प्रजा का उत्पत्ति होती है। हमको जन्म कैसे मिला? माता पिता के संयोग से मिला, उनके पुण्य से हमें मिला। देव पितृ कार्याभ्यम न प्रमितव्यम। तो देव और पितृ के कार्य में कभी भी प्रमाद ना हो, केयरलेस नहीं ना हो, हीडलेस ना हो। गुरु जी कहते हैं कि जब तक माता पिता जीवित होते हैं बहुत लोग जो है सेवा नहीं करते हैं, पूछते तक नहीं है, और जब मर जाते हैं तो फोटो बनाते हैं उसको पर माला भी लगा देते हैं। अब कोई भी आता है तो सोचता है कि भाई ये तो बहुत अपने माता पिता के भक्त रहे होंगे। तो माता पिता की जब तक जीवित काल है तब तक जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो राम जी भगवान होते हुए भी रोज सवेरे उठ के अपने माता पिता के चरण छूते थे, एवरीडे। ये सब संस्कार अब रहे नहीं। उनके लिए श्राद्ध वगैरह जो कुछ भी होता है करना चाहिए। मगर ये सब उठते जा रहे हैं, ये संस्कार जो है आस्ते 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 खत्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत संस्कार थे, उसके बाद 16 रह गए, अब 16 के बाद में भी अब लोगों को एक ही पता लगता है, एक ही संस्कार रह गया। एक तो विवाह लोगों को पसंद है, वो संस्कार रह गया, और मृत्यु, उसके बाद में भी जो पूजा पाठ होती है वो आजकल लोग करना नहीं चाहते। पितृ यज्ञ, एक नृ यज्ञ होता है, मनुष्य यज्ञ। ये क्या है भाई, जब हम जन्म लिए थे तो समाज में सब सोसाइटी में सब कुछ बना हुआ था ना। आप जब भारत से अमेरिका में आए तो आपको सब बना बनाया मिला कि नहीं मिला? यहां यूनिवर्सिटी है, व्यवस्था है, घर कारखाने सब लगे हुए हैं, हम अकेले तो कर नहीं सकते। देखो, अकेला एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको हम 100 बीघा जमीन दे दें और अकेले आपको एक आइलैंड पर छोड़ दें, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले खेती करनी है, फिर अन्न उत्पन्न होगा, उसके बाद में फिर आपका खाना बनेगा, फिर आप जो है बचोगे पढ़ाई लिखाई, कोई व्यवस्था नहीं है, अकेले कैसे रह सकते, अकेले आदमी रह नहीं सकता। तो ये सारी जो व्यवस्था है आगे से जो की हुई है, क्या हम इसके लिए ऋणी नहीं हैं उन लोगों के लिए? डेफिनेटली हम ऋणी हैं। तो उन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जैसा लोग करके गए। देखो, यहां सब जगह देना है, सेवा करनी है, भगवान बार बार कहते हैं देना है, सेवा करनी है। हम आपको बताते हैं एक रियल घटना कैसे लोग सहायता करने आते हैं। एक बार हम कलकत्ते से पूरी बाई कार जा रहे थे, 500 किलोमीटर रास्ता। उड़ीसा में एक जगह एक रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर में चढ़ते चढ़ते हमारी गाड़ी का सामने का एक पहिया पंक्चर हुआ या स्किड किया, रेलवे ब्रिज से जो है वो गाड़ी 6 बार पलटे खा के जमीन पर उल्टी गिरी। चारों तरफ मैदान, खेत, कुछ भी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो किसी ने वहां लोकल व्यक्ति ने देखा, उसने वहां दमकल वाले को फोन कर दिया, फायर ब्रिगेड, विलेज है, छोटा सा विलेज है। फायर ब्रिगेड वाला आ गया टन 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 करते हुए, उसने हम लोग सबों को, हम लोग निकल चुके थे गाड़ी से निकल के फिर जो है उसने हम लोग को बैठाया दमकल में, ले गया गांव के अस्पताल में। वहां पर उसका एक लोकल आदमी, वो एक गाड़ी लेके आ गया हम लोग के पीछे पीछे पीछे, आपको क्यों चाहिए बताइए। वह अस्पताल में जाके उसने हम लोग को डॉक्टर वगैरह को दिखा उखा के, पट्टी वट्टी मरहम वरम कर करा के, फिर बोलता है कि अब आप तो इस गाड़ी में जा नहीं सकते, तो हमने कहा वापस कलकत्ते जाएंगे। बोलता चलिए हम आपको स्टेशन छोड़ेंगे, देखो गांव में है अभी, हम उस आदमी को जानते भी नहीं है।
होटल में ले जाके खिलाया
सबको, उस आदमी ने जाके होटल में खिलाया हमें, हमसे पैसे नहीं लिए। उसके बाद ले जाके हमको स्टेशन ले गया, स्टेशन ले जाके टिकट वगैरह खरीद के वो प्लेटफॉर्म में गार्ड उसको टीटी को बोलता है कि भाई इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, इनको सीट दे दो। देखो इतनी दूर तक उसने काम किया, कोई जान पहचान नहीं है। ये है देना और सेवा करना। उसको क्या पड़ी हुई थी, हम उसको जानते नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसने किया। संभवतः हमको पता नहीं है, थैंक्स गिविंग इसलिए है अमेरिका के अंदर में। जैनी अगर आप लोग में से कोई होगा तो वहां पर भी आप लोग ऐसा करते हैं ना, क्षमा याचना करते हैं ना। समटाइम इन फरवरी मार्च में एक दिन आता है जिसके अंदर जैनी लोग हर अपने जान पहचान के पास में जाते हैं कि साल भर में कोई गलती हुई हो तो हमसे माफ कर देना, क्षमा याचना करते हैं। ये मनुष्य यज्ञ है। तो दूसरे प्राणियों के लिए क्या करें, और भी तो प्राणी है, ये तो नृ यज्ञ हुआ। एक भूत यज्ञ है, भूत यज्ञ मतलब पशु पक्षी को खिलाओ, उनका भी कुछ काम है इस दुनिया के अंदर में। जो पुराने लोग हैं उनको पता है जब रोटी बनाते थे तो एक गाय की रोटी, एक कुत्ते की रोटी और एक कुछ दाना चिड़िया लोग के लिए देना है, ऐसा करते थे। हर मील के अंदर एक दो रोटी बना के रखते थे कि सवेरे इसको गाय को देना है, ये पशु पक्षी के लिए है, ये कुत्ते के लिए है। देखो तो बंबई में आपको दिखाई पड़ेगा कबूतर के लिए लोग बहुत दाना देते हैं, बहुत कबूतर दाना देते हैं उसके लिए। कई जगह देखो बर्ड्स को हम लोगों ने मार दिया है, पक्षियों को मार दिया, उसके कारण क्या हुआ, कई बर्ड्स जर्म खाती हैं, कीड़े खाती हैं, अब वो कीड़े मकोड़े भर गए, अभी वल्चर नहीं है, दिखाई पड़ता है आपको वल्चर, वल्चर नहीं है। अब पारसी लोग तो अपनी बॉडी वल्चर के लिए रख देते हैं, दे डोंट क्रीमेट, मालूम है आपको कि नहीं? नहीं मालूम है? पारसी लोग एक जगह पर जहां पर वल्चर होते हैं उस जगह पर एक पिलर के ऊपर में उन्होंने माचा बनाया हुआ है, जितना भी धनी व्यक्ति हो या जो भी हो उनकी प्रथा के अनुसार से डेड बॉडी वहां पर उसके ऊपर रख देनी है और आप आ जाओ, और वो वल्चर जो है वो सब खाते हैं। तो पंच महाभूत, तो पंच महाभूत को आप पोल्यूट मत करो, अगर आप पोल्यूट करते हो हमें ही नुकसान है, पशु पक्षी ने पोल्यूट नहीं किया, पानी को किसने पोल्यूट किया, हमने किया, वायु को कौन पोल्यूट कर रहा है, वातावरण को कौन नष्ट कर रहा है, अभी आशीष जी बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब टॉर्नेडो हरिकेन ये सब आ रहे हैं, तो कौन किया, किसने किया ग्लोबल वार्मिंग, पशु पक्षियों ने किया नहीं, हमने किया है। तो हमारे सारे कर्म 24 घंटे यज्ञ रूपी होने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। यत कर्म करोति तत्त संभो आराधना, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, यत कर्म करोति, जो जो भी कर्म करते हैं वो भगवान शिव की आराधना हो। देखो हम खाना जब खाते हैं ना उसको भी यज्ञ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, खाना खाने के बाद जो ऊर्जा मिली उस ऊर्जा का उपयोग भगवान के लिए अगर करें तो खाना खाना भी यज्ञ बन जाएगा। अच्छा ज्ञानी केवल देखता है तो बोलता है वो भी यज्ञ है, ज्ञानी अगर किसी को देख ले तो कहते हैं वो भी एक यज्ञ है। कैसे भाई, तो हमारे शास्त्र में आता है द्वैत मकरंद में, कठाच कर्णत आचांत नमत मो अब्दवे नमः, नमः मीन्स मैं प्रणाम करता हूं, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, किसको, कटाच कर्ण नाचनाथ नमत मोह अब्द, जिसने केवल अपनी कटाच, कटाच आपको मालूम है किसको कहते हैं,
दृष्टि,
दृष्टि, जा बाबा ऐसे बैठे हो ना ऐसे देखते हो, आपने सिर नहीं हिलाया, अब आप कभी पार्टी वार्टी में जाना ना तो आप देखो कि बहुत महिलाएं कटाच देखती, उन्होंने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, इसने क्या गहना पहना है, ये साड़ी उसने उस दिन पहनी थी ये तो फिर से पहनी है, कटाच सिर नहीं लाई है, ये है कटाच। तो कहते हैं भगवान जो है अगर कटाच दृष्टि से देख लें तो क्या होगा, कहते हैं कि आपका मोह अब्ध, जो मोह जो है सागर रूपी मोह है, मोह छोटा नहीं है, बहुत विशाल मोह है हमारा, वो खत्म हो जाएगा। किसके लिए खत्म होगा, नमतः, जो नमन करेगा जो सरेंडर करेगा उसके लिए, केवल कटाच दृष्टि से हो जाता है। देखो अगर गुरु भी कटाच दृष्टि से देख ले तो शिष्य का भव सागर पार हो जाएगा। ऐसा मत कहो बड़ा बड़ा कर अपने बारे में, अपने गुरु शिष्य परंपरा की आप जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों ने विवेक चुड़ामणि में सुना होगा शंकराचार्य जी कहते हैं माम उद्धर आत्मीय कटाच दृष्टि, शिष्य कहता है कि ओ गुरु आपको हिलना नहीं है, मेरे लिए कुछ मत करो, क्या करो, आप जैसे बैठो केवल मेरी तरफ एक बार कटाच दृष्टि से देख लो, कटाच दृष्टि मतलब आप केवल पुतली हिला के एक बार मेरी तरफ देख लो, उतने में मेरे को कृपा हो गई। हम लोग जब वेदांत कोर्स कर रहे थे तो वहां पर कहते थे जो पुराने स्वामी जी या ब्रह्मचारी लोग जो सीनियर हैं, बोले कि अगर गुरु आके अगर आपको एक बार देख ले, गुरु जी जब आते थे ना हम लोग को ब्रह्मचारी के सारे के सब ब्रह्मचारी जितने कोर्स के थे 80-90, तो हम लोग को बता दिया जाता था कि गुरु जी अभी लैंड कर चुके हैं और निकल पड़े हैं, इतने बजे गुरु जी यहाँ पर शांतिनी में पहुँचेंगे। तो हम लोग 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले उनकी कुटिया के सामने सब इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे होकर गुरु जी आए, उतरे। अच्छा, उतर के गुरु जी सीधा अपनी कुटिया में नहीं घुसते थे, गुरु जी सबकी तरफ देखते थे, एक एक करके सबको देखते थे। प्रत्येक ब्रह्मचारी को वो देखते थे दृष्टि। और कहते हैं कि अगर वो आपका नाम जान ले तो सोचो कितना बड़ी बात है, देख ले तो बहुत बड़ी बात है, और अगर आपको नाम से पुकार लें तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते हैं कि महात्मा का दर्शन मात्र भी यज्ञ है, महात्मा का दर्शन मात्र भी यज्ञ है। महात्मा लोग के दर्शन नहीं होते, फिर विवेक चुड़ामणि में आ जाइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या है, दुर्लभम त्रयम एवं एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्नम मुमुच्छत्नम महापुरुष संश्रय। महापुरुष संश्रय, ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देखो ये भी कहा है वहां, दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभ है। अब इस मनुष्य के अंदर अगर मनुष्यत्व आ जाए, हर आदमी में मनुष्यत्व नहीं है, कई मनुष्य पशु के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं, उनका आचरण पशु रूप होता है। अगर मनुष्य आप हैं, मनुष्य का शरीर मिला है और उसमें मनुष्यत्व है, आप में मुमुक्षुत्व है, मुझे मुक्ति चाहिए ऐसा है, या महापुरुष संश्रय, महापुरुष संत साधु से अगर आपका मिलन हो जाए तो कहते हैं कि देव हेतु कम, हेतु इसका कारण क्या है, क्यों आपको दर्शन मिला, बोले देवताओं की कृपा है जिसके कारण आपको मिला। ये तीनों ही दुर्लभ हैं। भगवान कहते हैं ये साधक अपने जीवन में सेवा करते रहो, इससे आपका ईगो कम होगा, इससे ईगो कम होगा, सेवा करते रहो। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक शहर में एक जज था। अब जज के पास में नेचुरली वो काफी रिजर्व रहते हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर में उनके अपीयरेंस नहीं होती है, लिमिटेड सर्कल में वो लोग जाते हैं। क्यों ऐसा, कि सबको पता लग जाता है छोटा शहर है, अरे ये तो जज है, इसे दोस्ती करनी चाहिए, कल को कभी काम में लग जाएगा, होता ना ऐसा। तो वो व्यक्ति जब तक रिटायर नहीं किया तब तक वो बड़ा रिजर्व रहा, कभी सत्संग में नहीं जाता था, डर के मारे नहीं जाता था कि सत्संग में जाएंगे अरे जज साहब आए हैं, जज साहब आए हैं, जज साहब आए हैं, और सब कोई जो है दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। देखो आपके कंपनी कल्चर में भी ऐसा है, जो हाई पोस्ट में है ना उससे सब कोई दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, क्यों, कल को हमारे बच्चे के लिए इंटर्नशिप अगर लेनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, पूछना पड़ेगा ना उनको कि उनको इंटर्नशिप चाहिए भाई, आप कुछ कर दो, लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। तो ये जज जब रिटायर किया ना फिर सत्संग में आना शुरू किया, तो सत्संग में आके क्या करता था, पीछे बैठता था एकदम, लोग तो पहचानते थे उसको कि ये जज है। तब सत्संग हो रहा है आप सबसे पीछे बैठे हो तो लोग तो मुड़ के नहीं देखेंगे कि पीछे कौन बैठा है। जब सब लोग चले जाते थे ये जज जो है सारी दरियें उठा के अपने सिर पर लेके जाके रखता था, तो आचार्य ने उसे पूछा भाई ऐसा तुम क्यों करते हो, तुम तो जज रहे हो, ये सब काम करने के लिए दूसरे आदमी हैं, तुम क्यों करते हो। तो कहता था कि आप मना मत कीजिए हमें, क्यों? बोले भक्तों की पद धूली है। देखो ये सेवा भाव, दो सेवा करो। अच्छा भगवान यहां कहते हैं यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करने वाला श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करने के बाद में जो मिले उसको खाने वाला सिंह, अर्थात देव यज्ञ आदि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना जिसका स्वभाव है, वे सब पापों से अर्थात गृहस्थ में होने वाले चक्की चूल्हे आदि के पांच पापों से और प्रमाद से होने वाले, प्रमाद से मतलब केयरलेसली, आप झाड़ू दे रहे हो देख नहीं रहे, अरे कोई कीड़ा है मर नहीं जाए, प्रमाद से होने वाले हिंसादि जनित अन्य पापों से भी छूट जाता है, तथा जो उदर परायण लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी हैं और पाप ही खाते हैं। ये भगवान ने कहा और शंकराचार्य जी ने उसकी व्याख्या की। तो भगवान कहते हैं अपनी ड्यूटी करो, कर्तव्य कर्म करना होगा। हे अर्जुन इस युद्ध भूमि में तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है? युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? ये तुम्हारी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म है। जब तक शांति थी तब तक तो तुमने पैसे लिए, तनख्वाह तो आपने ली ना, हर महीने आप तनख्वाह लेते हो, आर्मी में हो। जब वार नहीं होती आर्मी लोगों को पैसे मिलते हैं कि नहीं, तलब मिलती है कि नहीं? और जब वार हो उस टाइम में अगर वो बोले नहीं जाएंगे हम, लोग छोड़ देंगे उसको? नहीं। तो युद्ध करो, युद्ध को यज्ञ बनाओ। देखो युद्ध को भी यज्ञ बन जाएगा। युद्ध यज्ञ कैसे बनेगा? भगवान के लिए कर रहे हैं, ये तो धार्मिक युद्ध है, वो भी यज्ञ बन जाएगा। तो भगवान जो है कहते हैं कि देखो हमने आपको युद्ध करो, अपनी ड्यूटी करो, इसके लिए हमने आपको कई क्या कहें आपको, कई युक्तियां दी आपको। क्या क्या युक्ति अब तक भगवान ने दी है? भगवान ने एक युक्ति उसको दी कि कर्म के बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते, जब सोते हो तब भी कर्म होता रहता है। क्या कर्म होता है सोए रहते तो? आप सांस ले रहे हो, डाइजेशन सर्कुलेशन सब चलता रहता है, कर्म होता रहता है। देखो जिसका जो कर्तव्य है वो करो। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध भूमि में क्या था? युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। अपना कर्तव्य कर्म करोगे तो मन शुद्ध होगा, ये हमें नहीं मालूम है। भगवान कहते हैं देखो इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए, और अगर नहीं करोगे कर्तव्य कर्म कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए युद्ध करना जरूरी है। भगवान कहते हैं इतने कारण तुम्हें बता दिए हैं, चार कारण उन्होंने बता दिए कि क्यों तुमको युद्ध करना चाहिए, क्यों हमें अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए। अब भगवान एक और कारण बताने जा रहे हैं क्यों हमें यज्ञ करना चाहिए, क्यों हमें देना चाहिए, क्यों हमें सेवा करनी चाहिए। पहले क्या चार कारण बताए थे? पहला आप बिना कर्म के नहीं रह सकते, दूसरा आपको अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, तीसरा कर्तव्य कर्म करने से मन शुद्ध होता है, चौथा अगर आप अपना कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अब पांचवा कारण भगवान बताने जा रहे हैं।
तीन श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि,
अन्नाद भवन्ति भूतानि,
पर्जन्यादन्न संभवः,
पर्जन्यादन्न संभव,
यज्ञात् भवति पर्जन्यः
यज्ञात् भवति पर्जन्यः
यज्ञ कर्म समुद्भवः
यज्ञ कर्म समुद्भवः
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षरसमुद्भवं
ब्रह्माक्षरसमुद्भवं
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्
एवं प्रवर्तितं चक्रम्
एवं प्रवर्तितं चक्रम्
नानुवर्तयतीह यः
नानुवर्तयतीह यः
अघायुरिन्द्रिया रामः
अघायुरिन्द्रिया रामः
मोघं पार्थ स जीवति
मोघं पार्थ स जीवति।
यहाँ पर शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, इसलिए भी अधिकारी को कर्म नष्ट करना चाहिए। अधिकारी मतलब कर्म के अधिकारी केवल मनुष्य हैं, इसलिए भी अधिकारी को करना चाहिए। आगे चार चीजें बता दी हैं क्यों करना चाहिए, इसलिए भी करना चाहिए। भगवान कहने जा रहे हैं क्यों करना चाहिए, क्योंकि कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है। ये जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर एक चक्र चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, और उस चलने का कारण क्या है, बोले कर्म है। तो जगत के ऊपर में आप ख्याल करोगे तो इसमें एक चक्र चल रहा है, और उस चक्र का सेंटर क्या है, बोले कर्म है। तो यह सृष्टि चक्र एक चलता जा रहा है, और उस सृष्टि चक्र का सेंटर जो है वो कर्म है। देखो सृष्टि चक्र आप एक मशीन की तरह समझ लो, या एक कारखाना समझ लो जिसके अंदर कई मशीनें हैं। एक तरफ से आपने कोई रॉ मटेरियल डाला और कई जगह से प्रोसेस होता हुआ वो, जैसे एक कपड़े की मिलो तो एक तरह से आपने कॉटन डाला, दूसरी तरफ से मशीन से कपड़ा निकल रहा है। या एक गाड़ी का कारखाना, तो गाड़ी के कारखाने के अंदर में आप देखो कि कई यूनिट्स हैं, एक के बाद एक करता हुआ वहां बाहर में जाके फिर फाइनल प्रोडक्ट निकल आता है। कई उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, होते हुए गाड़ी निकल जाती है। तो सब व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं तब जाके गाड़ी कंप्लीट होगी। अगर उसमें से एक व्यक्ति काम ना करे क्या होगा, एंड प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे मान लो अगर मेरी ड्यूटी हो कि सामने का एक चक्का फिट करना है, मेरे को फिट करना है, मैं अपनी ड्यूटी नहीं करता हूं, तो सब गाड़ियां क्या होगी, तीन चक्के वाली होगी, चौथा चक्का नहीं होगा, तो उसको गाड़ी कहेंगे कोई लेने वाला होगा, नहीं होगा। उसी तरह सृष्टि में भी जो एक चक्र चल रहा है, सब अपने अपना काम कर रहे हैं, केवल एक मनुष्य बदमाश है जो अपना काम नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है। अच्छा भगवान कहते हैं, जब जनरल मीनिंग देखते हैं, अन्नाद भवंती भूतानी, बोले अन्न से जीव का शरीर बनता है, अन्न से जीव का शरीर बनता है, और अन्न से ही नरिशमेंट होती है। हम लोग का जन्म हुआ 7 पाउंड, अभी कितने हैं, 170 पाउंड, तो 170 माइनस 7 163 पाउंड आया कहां से, अन्न से आया। ये देखो आप जरा सा भी सोचोगे ना, इसमें बहुत सोचने वाली चीजें हैं, देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अन्न कहां से आता है, बोले पृथ्वी से आता है। बोले ना, केवल पृथ्वी से नहीं आता है, भगवान कहते हैं पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्यात बरसात होती है तब अन्न होता है, बरसात नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। बहुत अच्छा, तो क्रम क्या हुई, पहले बरसात होगी, उसके बाद अन्न होगा, उसके बाद में शरीर होगा, नहीं बंजर भूमि रेगिस्तान में अगर बरसात नहीं होती है तो क्या वहां अन्न होता है? अगर अन्न नहीं होता है तो वहां क्या जीव जंतु हैं? नहीं है। तो ये क्रम है। अच्छा, तो बरसात होती कैसे है, पानी कैसे ऊपर जाता है, फिर कैसे नीचे आ जाता है? जब अगर नीचे आता है तो कभी ऊपर भी तो जाता होगा। अच्छा ठीक है। यज्ञात भवति पर्जन्य, बरसात कैसे होती है? बोले यज्ञ करने से होती है। ब्लफ हो ब्लफ है ना, ब्लफ। यज्ञ करने से बरसात होती है, भगवान कहते हैं तो होती होगी जरूर। अच्छा, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। यज्ञ कर्म समुद्वम, बोले यज्ञ कैसे होता है? बोले कर्म करने से यज्ञ होता है। आप यज्ञ कैसे करोगे? कर्म करना होगा ना। तो फिर अब क्रम क्या हुआ? बोले पहले कर्म करो, कर्म से यज्ञ हुआ, यज्ञ से बरसात आई, फिर बरसात से अन्न हुआ, अन्न से फिर आपका शरीर बनेगा। बहुत अच्छा। तो देखें, आज हम लोग एक ही श्लोक देखते हैं, फिर और दो श्लोक बाद में देखेंगे। तीन का एक ग्रुप है, और भी आगे आएगा क्रम, आएंगे और। तो अन्नात भवंती भूतानी, अन्न से शरीर। अच्छा, इसके ऊपर जरा विचार करो आप। हम लोग वेजिटेरियन खाते हैं मगर नॉन वेज हो जाता है, होता नहीं है। हमने वेजिटेरियन खाया, 7 पाउंड से 170 पाउंड, 163 पाउंड। देखो, ये जो 7 पाउंड भी जो बना है ना, ये माता जो अन्न खाती है उससे ही तो शिशु का वतन हुआ। उसका सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? पिता का वीर्य है। वो कैसे बना? वो भी अन्न खाया था पिता ने, उसके बाद वो बना। तो वीर्य से स्टार्ट करके उसके बाद में गर्भ के अंदर जो शिशु का फॉर्म है, या बाद में जो है, सब का सब अन्न से बना है। जो लोग वेजिटेरियन है उनको देखो, उनका भी शरीर जो है क्या, कैसे बना? फिर आपके शरीर के अंदर क्या क्या है? बोन मैरो है, बोन है, फ्लेश है, ब्लड है, फैट है, उसके बाद में ऊपर की चमड़ा है। इसके अंदर चर्म के अंदर दो भाग है, ऊपर वाला स्किन और उसके नीचे एक और होता है डर्मिस, उसको कहते हैं। तो ये 7 चीजें जो बनी, किससे बनी? आपने तो नॉनवेज नहीं खाया, कौन बनाता है कि नहीं? वंडर, आप बना सकते हो? चावल से खून बना के दिखाओ, रोटी से बना के दिखाओ, सब्जी से बना के दिखाओ, बोन बना के दिखाओ, बोन मैरो बना के दिखाओ। वंडर। पर्जन्याद अन्न संभव, जब बरसात होती है तब सीड स्प्राउट करता है। बरसात अगर नहीं होगी तो सीड जो है स्प्राउट नहीं करेगा, बीज जो है अंकुरित नहीं होगा। यज्ञात भवति पर्जन्य, बरसात यज्ञ कारण। हमने तो अमेरिका में किसी को नहीं देखा यज्ञ करते हुए उसके बाद बरसात होते हुए। देखा आपने कहीं कोई यज्ञ कर रहा है और बरसात हो रही है? नहीं देखा है। रशिया में, चाइना में, अफ्रीका में कहीं हो रहा है? नहीं, कोई नहीं यज्ञ करता है, तो ब्लफ है। एक साइंटिस्ट बोलेगा मैं बताता हूं कैसे होता है, कैसे बरसात होती है। बोला मैं बताता हूं कैसे होती है। बोला एक लॉ ऑफ रेडिएशन है, सूर्य की जब किरणें जब पड़ती हैं तो लॉ ऑफ रेडिएशन है, फिर लॉ ऑफ इवोपोरेशन है। इवोपरेट हुआ, उसके बाद में लॉ ऑफ कंडेंसेशन है, फिर वो भारी होता है, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फिर बरसात होती है। तो ऐसा मत सोचना हमारे ऋषि मुनि को पता नहीं था, उनको पता था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी होता है, बरसात कैसे होती है उनको पता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बादल देखते हो, ये बरसात होगी, किसान बेचारा देखते ही रह जाता, अरे अच्छा पानी आ रहा, बादल आ रहे हैं, हो गया हो गया, प्रसाद होता नहीं है, बादल चले गए। ये तो भगवान की व्यवस्था है, कहां पानी देना है कहां नहीं देना है। भगवान ने गीता में कहा है दो चीज हमारे हाथ में, क्या? ताप और पानी, ये कंट्रोल हम करते हैं, कहां पर ज्यादा सूखा करना है, कहां पर बरसात ज्यादा करनी है, मेरे पास में है सर। अच्छा देखो, ट्रेडिशनल मीनिंग ये है कि सचमुच एक सूक्त था जिसका नाम है पर्जन्य सूक्त। उस पर्जन्य सूक्त का यज्ञ करने से बरसात होती थी। अब हमें वो मालूम नहीं है पर्जन्य सूक्त, कोई करता भी नहीं है। तो आगे काल में ये ऐसा था, हमारे ऋषियों मुनियों को ये पता था और वो करते भी थे। अभी भी अकाल पड़ने पर यज्ञ वगैरह करते हैं ना। अब तो ट्रंप को जिताने के लिए यज्ञ कर दिया इंडिया में, बोलो यज्ञ कर दो, कुछ भी हो यज्ञ कर दो। तो भगवान गीता में कहते हैं कि निग्रहानि सृजामि मैं ही करता हूं, तपामि अहम्। भगवान ने गीता में कहा तपामि अहम्, मैं तपाता हूं। उसके बाद में अहम वर्षन, फिर वर्षा मैं करता हूं। उसके बाद में उत्सृजामि, बरसात होने के बाद में फिर आठ महीने तक फिर मैं उसको उत्सृजामि करता हूं। आप लोग जो कहते हैं ना लॉ ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, भगवान कहते हैं आठ महीने करता हूं ये, और उसके बाद में निग्रहामि, फिर जो है मैं उसको बरसात करता हूं। तो ये सब भगवान के हाथ में है। अच्छा, तो ट्रेडिशनल मीनिंग यज्ञ का क्या हुआ कि बहुत कर्म करना यज्ञ है, बहुत कर्म करना है, बहुत से काम करने पड़ते हैं। देखो एक यज्ञ के अंदर बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। आगे के जमाने में लोग गांव का गांव लगता था, इतनी लकड़ी चाहिए, इतना हवन चाहिए, इतनी सामग्री चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए होती थी। तो ये कर्म क्या है? तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्य रूप में परिणित होने पर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये हमने देख लिया कि अन्न से ही वीर्य, वीर्य से ही माता के गर्भ के अंदर में शिशु का बदन बढ़ता है, उसके बाद में जन्म के बाद में हमने देखा है कि अन्न से ही हमारी नरिशमेंट होती है। पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से वृष्टि होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। और केवल भगवान ही नहीं, हमारे मनुस्मृति भी ऐसा कहती है, अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यग् आदित्यम उपस्थिते, आदित्यात् जायते वृष्टि, वृष्टेर अन्नम ततः प्रजा। जो भगवान ने अभी कहा ना, मनुस्मृति में ऐसा कहा है कि अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है। आप जो भी आहुति अग्नि में देते हो, आपने देखा है लपटें बराबर ऊपर जाती हैं, कभी लपटों को नीचे जाते देखा है? क्यों जाती हैं ऊपर? क्योंकि वो सूर्य को मिलना चाहती हैं। सूर्य कहां है? ऊपर है। सूर्य से वृष्टि होती है, वो लपटे सूर्य के, हमने हवन किया, यज्ञ किया, किसके पास गया? सूर्य के पास गया। फिर सूर्य क्या कहता है? वो तपाता है, उसके बाद में बारिश करता है। सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस स्मृति वाक्य से भी यही बात पाई जाती है। ऋतिक और यजमान, ऋतिक कहते हैं जो पूजा करवाता है, यज्ञ के अंदर जो है जो पुजारी होता है, जो हवन करवाता है, उसको ऋतिक कहते हैं। ऋतिक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है। यजमान और ऋतिक मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो मंत्र पढ़ेगा ऋतिक, और यजमान जो है उसके हिसाब से जो जो करने को कहेगा वो करता जाएगा, इसको कर्म कहते हैं। और इस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्व यज्ञ कर्म समुद्भव है, उसके कारण जो आपका फल मिलने वाला है वो अपूर्व रूप यज्ञ है, अर्थात वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ कैसे हुआ उत्पन्न? कर्म करने से उत्पन्न हुआ। तो ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। ये तो एक पार्ट हुआ, अभी और है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भगवान और बताएंगे, और स्टेप हैं। उसके बाद में भगवान कहेंगे एवं प्रवर्तितम चक्रम। बोले इस तरह से ये चक्र चल रहा है। नानुवर्तित ये जो इसके अंदर ऐसा वर्तन नहीं करता है, जो इस चक्र को नहीं मानता है। अघायु इंद्रिय रामा, अघायु में वो पापी है, पाप उसका जीवन पापमय है। अघायु पाप मोघम पार्थ से जीवित, मोघम व्यर्थ जीता है वो, उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों जीवन व्यर्थ है? अरे इसी जीवन के अंदर आप जो है आत्मज्ञानी बन सकते थे। अगर आप भगवान जो कहते हैं वैसा करें तो आप आत्मज्ञानी बन जाओगे, मगर आप भगवान की बात नहीं सुनते तो क्या रहोगे? अज्ञानी रहोगे। इसको और हम अगले छत्र में देखेंगे। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।